हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। फिलहाल उसने आर्यन को फोन किया, लेकिन आर्यन ने फोन का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसे आर्यन को एक वॉइस मैसेज भेजना पड़ा, तब उसने उसे मैसेज में लिखकर भेजा था, आर्यन मैं झलक बात कर रही हूँ, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो मेरे माता पिता को जो बीमा मैंने करवाया है उसे दिलाने में मदद करना और उन्हें यहाँ से हमेशा के लिए बाहर निकालना याद रखना। ये बोलकर उसने जल्दी ही उसे वॉइस मैसेज भेज दिया था। फिर उसने कुछ और टेक्स्ट मैसेज करके फ़ोन अपने बगल में बैठे हुए लड़के को दे दिया और उसे शुक्रिया अदा किया। तब वो लड़का हल्का सा हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं। उस आदमी ने अपना फ़ोन ले लिया और वहाँ से चला गया। लेकिन जैसे ही वो आदमी गया, अस्पताल से सफ़ेद कोट पहने कुछ लोग उसके पास आ गए। झलक तुरंत जोर से चिल्लाई, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, हेल्प हेल्प। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ मीटर भी दूर जा पाती, सफ़ेद कोट पहने हुए कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसका मुंह बंद कर दिया और उसे डांटते हुए कहा, तुम फिर से भागने की कोशिश क्यों कर रही हो? उसके बगल में खड़े हुए आदमी ने झलक को घूरते हुए डराते हुए कहा, तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी कैसे कर सकती हो? ये बोलकर जल्दी ही उन्होंने झलक का मुंह बंद कर लिया और उसे चिल्लाने से रोकने लगे। झलक झटपटाते हुए खुद मुंह छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और अटकती आवाज में बोलने की कोशिश कर रही थी, कोई तो मेरी मदद करो, पुलिस को बुलाओ, कोई पुलिस को बुलाओ, मेरी मदद करो। लेकिन अब वो मजबूत और हट्टे कट्टे आदमियों के सामने मजबूर हो गई थी। उन्होंने झलक को जमीन पर गिरा दिया और उसका मुंह एक कपड़े से ढककर उसे लेकर जाने लगे। लेकिन तब तक शोर सुनकर आसपास काफी लोग जमा हो गए थे, जो एक दूसरे से बातें करने लगे थे। कुछ लोग कह रहे थे, मुझे लगता है कि शायद इस लड़की का अपहरण हो गया है। एक बोल रहा था, मैंने इन आदमियों को पहले कभी नहीं देखा, आप लोग किस अस्पताल से हैं? जब सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए, तब जल्दी ही एक आदमी आगे बढ़कर कहने लगा, आप लोग कौन हैं? इस तरह से इस लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हैं? तभी जो सफ़ेद कोट पहना हुआ एक आदमी था, वो तुरंत आ गया और बेरुखी और दमदार आवाज में बोला, ये लड़की मानसिक रोगी है, ये मेंटल हॉस्पिटल से भागी हुई लड़की है, इसे ही हम लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये लोगों को नुकसान भी पहुँचा सकती है और पिछली बार तो इसने किसी पर चाकू से भी मार दिया था। तभी दूसरा आदमी भी वहाँ आ गया और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, ये तो बड़ी डरावनी और खतरनाक लड़की है, भागो यहाँ से, इससे दूरी बनाकर रखो। अब जल्दी ही उन चारों गुंडों ने झलक को एक मानसिक रोगी साबित कर दिया था। वहाँ मौजूद लोग अब डर कर पीछे हटने लगे। उन्हें लग रहा था कि अगर ये लड़की छूट गई और फिर से बेकाबू हुई तो किसी पर चाकू से हमला कर देगी, और वो सब अब पीछे हट गए। अब जल्दी ही झलक को एक वैन में बिठा लिया गया था और वैन का दरवाज़ा बंद कर दिया गया और वैन स्टार्ट हुई और धीरे धीरे वहाँ से चले गए। वहीं इस समय आकांक्षा अस्पताल की ऊंची बिल्डिंग पर खड़ी होकर नीचे की ओर ये नज़ारा देख रही थी और सब कुछ अपनी डेंजरस आँखों से देख रही थी। उसके होंठ मुस्कुराते हुए आपस में मुड़ गए थे। उसका सुंदर चेहरा इस वक्त बड़ा ही प्यारा लग रहा था। धीमी और चार्मिंग आवाज में बोली, झलक, भले तुम कितनी ही होशियार क्यों ना हो, कितनी भी चालाक क्यों ना हो, फिर भी तुम मुझसे मेल खा सकती हो, फिर भी तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती हो। ये बोलते हुए आकांक्षा बड़ी ही खतरनाक लग रही थी और शैतानी मुस्कान से देखकर बोली, आज से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेंटल हॉस्पिटल में कैद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उसका एक और इरादा भी था। उसने झलक से झूठ बोला था कि अगर वो शहर को छोड़कर चली जाती है तो वो उसके पहले वाले माता पिता को छोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं था। आकांक्षा ने छोड़ लिया था कि वो इस बार कहानी को जड़ से खत्म कर देगी और अब वो झलक के साथ उसके माता पिता को भी हमेशा हमेशा के लिए मरवा डालेगी। साथ ही साथ आकांक्षा सोच रही थी कि जब तक झलक मेंटल हॉस्पिटल में रहेगी उसे हमेशा पागल ही समझा जाएगा। अभी आकांक्षा हल्की मुस्कान दबाए हुए अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसे अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और झलक कहाँ है? जैसे ही उसके पीछे से आवाज़ आई, आकांक्षा थोड़ी सी हड़बड़ा गई और पीछे मुड़कर सिद्धार्थ की ओर देखने लगी, क्योंकि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ खुराना से रहा हुआ था जो कि उसकी ओर गहरी नजरों से देख रहा था। तब जल्दी से आकांक्षा अनजान बनते हुए बोली, वो एक्चुअली मेरे दोस्त का फोन आ गया था, तो वही फोन अटेंड करने के लिए मैं यहाँ आ गई थी। उसने बड़ी ही धीमी आवाज से झूठा जवाब दिया था। और तभी सिद्धार्थ उसकी ओर सर्द नजरों से घूरते हुए बोला, तुमने अभी क्या कहा? तुम यहाँ फोन अटेंड करने के लिए आई थी? क्या तुम झलक के साथ वार्ड में नहीं थी? हाँ। तभी आकांक्षा एक्सप्लेन करते हुए बोली, एक्चुअली उसने मुझसे कहा कि वो कुछ नाश्ता वगैरह करना चाहती है, इसलिए मैंने बॉडीगार्ड को नाश्ता लाने के लिए भेज दिया था। अब ये सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। साथ ही साथ वो ये सोचने लगा कि जरूर झलक ने यहाँ से बाहर निकलने के लिए इस तरह का बहाना बनाया होगा, और बॉडीगार्ड के वहाँ से जाते ही जरूर झलक वहाँ से भाग गई होगी। इस वक्त गुस्से से उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था और चिढ़कर मन ही मन सोचने लगा कि आखिरकार ये लड़की मुझे इतना ज्यादा परेशान क्यों करती है? कोई किसी को इतना ज्यादा इरिटेट कैसे कर सकता है? आकांक्षा तो प्यारी और मासूम सी शक्ल बनाकर वहाँ खड़ी हुई थी, मानो वो सिद्धार्थ को कहना चाह रही हो कि उसकी इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है। लेकिन मन ही मन में इस वक्त आकांक्षा के दिल में तूफान सा उठ रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ का उतरा हुआ चेहरा ये जता रहा था इस वक्त वो कितना ज्यादा गुस्सा और निराश है। जाहिर था वो झलक के जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। आकांक्षा गुस्से से बेचैन होकर मन में सोच रही थी कि झलक जिसने खुद को एक बदसूरत रूप दे रखा था उसमें कोई क्वालिटी भी नहीं है, सबको उल्टा सीधा बोलती है, जिसे बोलने तक की तमीज नहीं थी, फिर भी सिद्धार्थ उसे इतना ज्यादा क्यों पसंद करता है? आखिर वो सिद्धार्थ को इतना ज्यादा प्रभावित क्यों करती है? और साथ ही साथ आर्यन रायचंद उसे क्यों पसंद करता है? वेल, जबकि उसके बदले में आकांक्षा कितनी बड़ी महान थी, सोशल लाइट के रूप में वो हर जगह मौजूद रहती थी, कई लोगों की मदद करती थी, कहीं कुछ करती थी, हर जगह से उसे तारीफें मिलती थीं, लेकिन फिर भी वो एक बदसूरत सी लड़की झलक से हार गई थी। हालांकि वो उसकी अपनी सगी बहन थी, लेकिन फिलहाल वो उसे बे इंतहा नफरत करती थी। अब तक आकांक्षा खुद को जज्बातों पर काबू करते हुए बात संभालते हुए बोली, सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि हमें उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अब जैसे ही आकांक्षा ने ये सवाल किया, सिद्धार्थ अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करके मन ही मन अपनी दुविधा से बाहर आया और आकांक्षा की ओर शांत नजरों से देखकर बोला, एक्चुअली वो दादी उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है, तो मैं नहीं चाहता कि दादी को ये पता चले कि वो लड़की अभी यहाँ मौजूद नहीं है। तुम तो जानती हो दादी की हालत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और दादी उसे अपनी पोती भी मान चुकी हैं, सो बस इसीलिए मैं उसके बारे में पूछताछ कर रहा था। सिद्धार्थ ने जल्दी से बहाना बनाया, क्योंकि वो अपनी बातों से बिल्कुल भी किसी को भी इस बात का एहसास नहीं करवाना चाहता था कि उसे झलक की परवाह है, उसे पसंद करता है और वो झलक से मोहब्बत करता है,
क्योंकि ये बात वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। भला सिद्धार्थ को एक गवार लड़की जिसे बोलने तक की तमीज नहीं है, यहाँ तक कि वो दिखने में बड़ी ही बदसूरत है, उसे उस लड़की से प्यार कैसे हो सकता था? तो इसीलिए सिद्धार्थ अभी ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। आगे की स्टोरी जानने के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए स्टोरी मनिया, और प्लीज मेरी बाकी की स्टोरी को भी देख लो यार, क्यों नखरे दिखा रहे हो? एक बार पढ़कर तो देखो, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अरे ना भी पसंद आए तो साफ साफ कमेंट में बोल देना यार, लेकिन रीड तो करो।